कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है, आय 69 से 79 रुकू 3 है पारे का। अल्लाह ताला हर साहिब इल्म से बरतर है। वलम्मा दखलु अला यूसुफ, और ये अब सेकेंड एंट्री है ब्रदर्स की यूसुफ के पास। ये सब जब यूसुफ के पास पहुंच गए तो इसने अपने भाई को अपने पास बिठा लिया और कहा कि मैं तेरा भाई यूसुफ हूँ, बस ये जो कुछ करते रहे इसका कुछ रंज ना कर। इस जुमले से पता चलता है कि यूसुफ के साथ साथ बाद में बिन्यामीन को भी ये सताते थे। और दूसरी बात तमल की नोट करें कि भाई भाई से मिल रहा है और क्या कह रहे, फला तब तईस। हम सैटरडे को क्या करते हैं, तुम्हारी सास क्या कहती है? अच्छा मियाँ साहब के क्या, वो नन, वो मेरी भी ऐसी है। सैटरडे ससुराली रिश्तों के गुनाहों की माफ़ी का दिन होता है दिली बरादरी में। ये मैं बाहर वालों को बता रही हूँ, मदर डे सारी बेटियाँ इकट्ठी आती हैं और भाभियों को भी इसीलिए भेज देते हैं कि उसकी बुराइयाँ जो करनी होती हैं। मुझे कभी नहीं समझ आता कि घर में बेटियाँ आई हैं तो बहू की तो ज़रूरत है, कोई भाभी और नंदों का भी तो बोंड बनने दीजिए। नहीं वो फिर होगी तो बेटियों का अपना अपना नहीं लगेगा ना। सासों की बुराइयाँ करने से बेहतर है कि माँ की कर ले, ताकि आपकी नेकियाँ आपकी माँ के पास जाए उनके पास ना जाए। अच्छा हमारे कल्चर में पता क्या, मजलूम बनने का कल्चर है। वो कहेगी तुम्हें पता है मेरी सास ने क्या किया है, ऐसी थी। आप कहते हैं ठहर जाओ, तुम्हारी ना शुक्र करो इतना किया, मेरी तो ये भी करती है। अच्छा तीसरी बोलेगी अरे मेरी तो नंद भी ऊपर लुक में देती है। यानी हम अगले से बढ़ बढ़ के मजलूम बनना चाहते हैं। अल्लाह हमें माफ़ करे। इधर से अमल का नुक्ता लिख लीजिए, शिकायतों से ऊपर उठिए, कुछ काम करना है तो। फिर जब इन्हें इनका सामान असबाब ठीक ठीक करके दिया तो अपने भाई के असबाब में पानी पीने का प्याला रखवा दिया, मोहब्बत से रखा दिया। फिर एक आवाज़ देने वाले ने पुकार कर कहा ए काफले वालों तुम लोग तो चोर हो। उन्होंने इनकी तरफ मुंह फेर कर कहा कि तुम्हारी क्या चीज़ खोई है? जवाब दिया शाही पैमाना गुम है, जो इसे ले आए इसे एक ऊँट के बोझ का गल्ला मिलेगा, इस वादे का मैं ज़ामिन हूँ। उन्होंने कहा अल्लाह की कसम तुमको खूब मालूम है कि हम इस मुल्क में फसाद फैलाने के लिए नहीं आए और ना हम चोर हैं। उन्होंने कहा अच्छा चोर की क्या सज़ा है अगर तुम झूठे हो? जवाब दिया कि इसकी सज़ा यही है कि जिसके असबाब में से पाया जाए वही इसका बदला है। यानी दीन इब्राहिमी में 1 साल तक चोर को वहाँ रहकर एक किस्म की खिदमत करनी होती थी। हम तो ऐसे जालिमों को यही सज़ा दिया करते हैं। बस यूसुफ ने इनके सामान की तलाशी शुरू की, अपने भाई के सामान की तलाशी से पहले। फिर इस पैमाने को अपने भाई के सामान यानी जंबील से निकाला। हमने यूसुफ के लिए इस तरह ये तदबीर की इस बादशाह के कानून की रूह से, ये अपने भाई को ना ले सकता था मगर ये कि अल्लाह को मंजूर हो। हम जिसके चाहें दर्जे बुलंद कर दें, हर जी इल्म पर फौकियत रखने वाला दूसरा जी इल्म है। यहाँ चावल की मिसाल दे दूँ, फौक कुल्ली जी इल्म नलीम। कभी अपने आप को इल्म वाला मत समझे, मुझे तो आ गया, मैं तो पढ़ाती हूँ, मैं तो बताती हूँ, मुझे तो अब इतने लोग जानते हैं। वो कहेंगे खाए ये भी पढ़ती हैं आके, इसका तो इनको नहीं आता। नहीं, फौक का कुल्ली जी इल्म नलीम, हर इल्म वाले से ऊपर इल्म वाला है। दूसरे से फ़ायदा लेंगे तो आपका अपना फ़ायदा। आप देखिए कि आप आईना देखते हैं ना, सामने से आपको अपना फेस दिखता है। अब मैं अपने सामने ये मिरर रखूँ और मैं कहूँ कि मैं अपने आप को देखूँ तो मुझे अपना फेस दिखेगा ना, लेकिन अगर मैंने पीछे से गुद्दी के बाल देखने हैं तो मुझे एक आईना पीछे रखना होगा। बस ये मिसाल है। जो लोग एक नटशेल में घूम फिर रहे होते हैं, और जबकि अपना इल्म ही कच्चा है। आप PhD करिएगा लेकिन पहले आप बीच के मरले तो कर लें, और आप अभी सबीलुल जन्नत नहीं कर रहे और आप कह रहे हैं मैं ये भी ले लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, सिर्फ तकाबुल करेंगे आप एंड पे। जो कच्चा बंदा मुख्तलिफ लोगों से सुनने लग जाता है वो सिर्फ तकाबुल सीखता है। बोला ऐसा बोलता है, बोला ऐसे बोलता है, वो जल्दी कराते हैं, वो तेज़ कराते हैं, वो गुस्से से बोलते हैं, ये प्यार से बोलते हैं, और सुन सुन के सुन हो जाते हैं। अच्छा जी मैंने अपनी क्लास सुन ली, अब मैं यही आयतें ज़रा कहीं और 2-4 जगह से पढ़ लूँ, कतन फ़ायदा नहीं होगा, ये हिकमत के ख़िलाफ़ है। इसलिए जब आपको तफसीर कोर्स ऑफर किए जाते हैं तो पूरी रिक्वेस्ट होती है कि आप इसके अलावा और अभी कुछ ना करें। कच्चा पक्का अपना तर्जुमा अब याद करने का टाइम नहीं, ग्रुपिंग आप ले नहीं रहे और आप दूसरी चीज़ों में पड़े हुए हैं, तो फिर दरख्त नहीं उगेगा, ये बेल का काम होता है। इसलिए आज हमने अपना पूरा स्टडी प्लानर सेट करना है कि मुझे बनना क्या है एंड पे। कच्चा लेंगे कच्चा देंगे, अच्छे स्टूडेंट होंगे अच्छे टीचर होंगे इंशाल्लाह, और कच्चे पक्के स्टूडेंट होंगे तो कच्चे पक्के टीचर होंगे। तो यहाँ जो बात है वो पता क्या चलती है कि हम जब भी कभी ऐसी चीज़ें पढ़ें तो हमेशा सोचें कि मेरे से भी तो ज़्यादा कोई जानने वाला है, और सच है कि है नहीं है, सारी दुनिया आपसे ज़्यादा जानने वाली है। हज़रत मूसा का ये जुमला अल्लाह को अच्छा नहीं लगा था, उन्होंने उनको पकड़कर सफ़र पर डाल दिया था। आगे हम पढ़ेंगे 15वें कैंट पर 16वें पे। तो बहरहाल यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से से ये बात सीखी, फिर आगे कहानी बढ़ी। उन्होंने कहा अगर इसने चोरी की तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, इसका भाई भी पहले चोरी कर चुका है। यूसुफ ने इस बात को दिल में रख लिया। क्या है इसमें? सब्र। दरख्त कब बनता है? सब्र सब्र। पी गए ना, आपके मुंह पे कोई आपको कहते चोर है, हम आपकी बहन चोर है, और आपको पता थी कि आपकी बहन चोर नहीं, लेकिन हजरत यूसुफ चुप करके पी गए। और देखिए, एक तरफ करे जी इकतदार, आप बड़े बाइज्जत, और दूसरी तरफ करे आप चोर हैं। इंसानों के लिए इतना महदूद होता है। आप लोगों के शहर से निकल जाए तो आपको इंशाल्लाह बहुत बड़ी खैर मिलेगी। फिर कहा, क्या कहने लगे, तुम बदतर जगह में हो और जो तुम बयान करते हो अल्लाह इसे खूब जानता है। उन्होंने कहा, ए अजीज़ मिस्र, इसके वालिद बड़ी उम्र के बिल्कुल बूढ़े शख्स हैं। किसके बाप? इसके के हम सबके। टोन नोट कीजिए, आप इसके बदले हम में से किसी को ले लीजिए, हम देखते हैं कि आप बड़े नेक नफ्स हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, हमने जिसके पास अपनी चीज़ पाई है इसके सिवा दूसरे की गिरफ्तारी करने से अल्लाह की पनाह मांगते हैं, ऐसा करने से तो हम यकीनन नाइंसाफ़ी करने वाले हो जाएंगे। अब आप देखिए कि यहाँ कुछ कड़ियाँ मिसिंग हैं। किस्सा यूसुफ अहसनुल कसस है, और अहसनुल कसस वो होता है कि जिसमें लेसन्स एंड मॉरल्स ज़्यादा हों, ना कि उसमें फिक्शन। एक कपल, एक दूल्हा दुल्हन, एक हीरो हीरोइन और कुछ फैशन डिज़ाइनर्स और ऐसी बातें। आज ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में ये सब कुछ डल गया। अब यहाँ एक सवाल जिसका बहुत लोगों के जहन में कन्फ्यूजन है, उसका जवाब देती हूँ कि ये यूसुफ साहब ने खुद ही एक प्याला रख दिया, बाद में भाई बेचारे पर इल्ज़ाम लगवा दिया, है ना क्वेश्चन? बहुत सारे लोग इसको समझ ही नहीं पाए आज तक, जो समझ गए उनको अल्हम्दुलिल्लाह पता है। आप देखिए कि यूसुफ ने मोहब्बत की बुनियाद पे बिन जमीन के सामान में एक प्याला रखा जो चांदी का था, रख दिया। मोहब्बत थी, भाई है, और दिल से मोहब्बत होती है, इंसान उसको कोई तोहफा देता है तो खुश होता है। बिन जमीन को भी नहीं बताया, सरप्राइज था, घर जाकर खोलेगा तो पता चल जाएगा। ये तो था काम यूसुफ का जो उन्होंने खुद किया। अल्लाह की कुदरत देखिए कि एक दूसरा प्याला जिससे शाही पैमाने के तौर पे गल्ला नापते थे वो मिसप्रेस हो गया। इधर उधर हमारी अपनी छुरी नहीं घूमी रहती, किचन में काम करते हैं कभी चम्मच नहीं मिला, वो इधर से उधर हो गया, तलाशी ली, तलाश ने मिल नहीं रहा। अब जो वो वर्कर्स थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार के या उस जगह के, उन्होंने कहा कि किधर गया हमारा प्याला, क्योंकि उस वक़्त के प्याले भी सोने चांदी और हीरे मोती लगे होते थे। अच्छा, अभी ये काफिला गया है, वो जिसमें यूसुफ के भाई गए थे, उनको तो नहीं पता यूसुफ है, एक आम काफिला था। उन्होंने पीछे से बात की, ओ काफिले वालों इधर आ जाओ, क्या हुआ? जब बुलाया पूछगिछ की, कहा छबी हमने तो कुछ नहीं किया, बाकी उन्होंने कुछ नहीं किया था, तलाशी ले लो। अब तलाशी ली ना तो वो प्याला कोई नहीं मिला, एक और मिल गया जो यूसुफ ने रखा था, वो उसको भूल गए। इसकी बुनियाद पे कहा कि अच्छा जी, आप हमारा प्याला लेके जा रहे थे। और उस वक़्त शरीयत इब्राहिमी नाफिस थी मिस्र में, नोट कीजिएगा। फिरौन का दौर बाद में आता है, हज़रत यूसुफ के दौर से पहले यहाँ मलूकियत थी, और हज़रत यूसुफ को वहाँ अल्लाह ने वज़ीर ख़जाना के तौर पे सिर्फ पाँव डालने का मौका दिया, उन्होंने वहाँ शरीयत इस्लामिया नाफिस करा दी। आप अभी 70 साल में नहीं करा सके, जहाँ भी है वहाँ भी पार्शल ही है, ओवरऑल तो कहीं भी नहीं है। और शरीयत इब्राहिमी में चोर की सज़ा क्या थी, कि 1 साल तक वो मालिक का गुलाम बनकर उसकी खिदमत करेगा। बिन जमीन के सामान से जब प्याला निकला तो ये कोइंसिडेंसेस हैं, अल्लाह जब कोई काम करना चाहता है गैर मखसूस तरीक़ों से काम कराता है। वो नहीं मिला, ये मिल गया, इसकी सज़ा थी कि इसको पकड़ लिया जाए। और आप इसको नोट करिएगा बाद में, अभी नहीं, कि बिन जमीन के सामान में रखा था सिकाया, उसकी ज़मीर है हा, और बादशाहों ने जो ढूंढा बाद में वो था सुआ, उसके साथ ज़मीर लगी हुई है हु। जो चीज़ निकली उसके लिए लफ्ज़ क्या आया, हा, सुमस्तखरज हा मिम वियाई अखी। ये ज़मीर का फ़र्क बता रहा है कि तलाश के बाद बिनजमीन के सामान से सिकाया निकला था, सुआ नहीं निकला था। तो बहरहाल ये एक छोटी सी बात थी। दूसरी बात देखिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पे एक इल्ज़ाम लगा और चुप रहे, आप भी चुप रहा करें। दरख्त बनना है ना तो बहुत कुछ सहना पड़ेगा, कितने थपेड़े सहता है दरख्त फल लाने तक। आंधियाँ भी आती हैं हर साल गर्मी के सीज़न में, तूफान भी हैं, आप अगर बड़े बनना चाहते हैं ना, आपके ऊपर लोग पत्थर फेंके या फूल फेंकिए। सब्र सब्र, साहबा बर्दाश्त करते थे, शिकायतें होती थी, गिले होते थे, कटते नहीं थे, वरना कट गए तो रह गए, अलग हो गए। पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो बहरहाल इस वाक़े से पता चलता है कि अल्लाह ताला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इस किस्से से हमें क्या कुछ सिखाया। अपने लिए अमल की बातें नोट कर लीजिए। गम ख्वारी करना है, यदि लोगों के गम बांटिए, अपनी ज़ात को बेनिफिशियल बनाइए। दरख्त जो है ना, वो दुख बांटता है। साहबा ने लोगों के दुख बांटे, जो कर सकते, किसी के दुख सुन लें, किसी बीमार की इयादत कर दें, किसी की खिदमत कर दें, किसी को खाना पकाने में हेल्प कर दें, किसी को कुरान पढ़ा दें। और ये मल्टी डायमेंशनल नेकियां जो होती है ना, ये इंसान को बहुत ईमान देती हैं। इस तरह चोरी नहीं करना, फसाद नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, जुल्म नहीं करना और बेबुनियाद इल्ज़ाम नहीं लगाने। अब ज़रा सुनिए कि हज़रत याकूब के साथ क्या होता है। आयत 80 से 893 है, रुकू नंबर 4। परेशानी और गम का शिकवा सिर्फ अल्लाह ताला से। फलम मस्तयसु मिन्हु खलसु नजीया। जब ये इससे मायूस हो गए और तन्हाई में बैठकर मशवरा करने लगे, इनमें से जो सबसे बड़ा था उसने कहा, तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे वालिद ने तुमसे अल्लाह की कसम लेकर पुख्ता कौल इकरार लिया है, और इससे पहले यूसुफ के बारे में तुम कोताही कर चुके हो। बस मैं तो इस सरजमीन से ना टलूंगा जब तक कि वालिद साहब खुद मुझे इजाज़त ना दें, या अल्लाह ताला मेरे इस मामले का फैसला कर दे। वही बेहतरीन फैसला करने वाला है। तुम सब वालिद साहब की खिदमत में वापस जाओ और कहो कि अब्बा जी, आपके साहबजादे ने चोरी की है। टोन देख लीजिए, फिर वही है, लिख लीजिए, बा अदब बा नसीब, बेअदब बेनसीब। मैंने कभी उस दरख्त पे फल लगते नहीं देखा, उस इंसान को कभी बराबर होते नहीं देखा जिसके अंदर एटीट्यूड हो, अना हो, दूसरों से शिकवे, अपने ऊपर कुछ नहीं, और जिसकी बातचीत में अदब ना हो। हमारे असलाफ इल्म कम अदब ज़्यादा लेते थे, आज इल्म ज़्यादा अदब कम। इल्म के नाम पे दौर दौरे हैं और उस्तादों के नाम लेते हैं, उस्तादों से बदतमीज़ी करते हैं और उनके बातें करते हैं, महफिल में कुरान पढ़ने के दौरान बीच में बातें कर रहे होते हैं। कल परसों मैंने एक बड़ा तल्ख तजुर्बा किया। इधर मस्जिदों में आपको पता है रात को कुरान में तर्जुमे का दौर, तो वहाँ एक दिन गई, पहले उन्होंने 4 फ़र्ज़ पढ़ाए, फिर कुरान का कुछ हिस्से का तर्जुमा, फिर इस तरह 4 तरावी के बाद था, प्रोजेक्टर पे लगा के तो तर्जुमा शुरू किया। यकीन करिए आप, मेरा 300 औरत होगी, पूरा शादी हॉल था ना, आधे में मर्द आधे में औरतें थी। मैं मुहावरतन कहूँगी, कोई एक औरत भी नहीं सुन रही थी। बीच में उन्होंने चाय सर्व करनी शुरू कर दी, बिस्किट आ गए, बच्चे हैं, औरतें हैं, और ऐसे मजमों में बातें चीतें कर रही हैं। जब वो सारा तर्जमे का स्लॉट पूरा हुआ, इमाम साहब ने अल्लाह अकबर करके 6ठी तरावी शुरू की, सब तीर की तरह सीधे खड़े हो गए। मैं उस वक्त आपके इस दौरे कुरान को सोच रही, और मुझे आप पे जो प्यार आ रहा था उस वक्त, कहला कितने इनके सब्र हौसले हैं, भी औरतें और चुप करके सुन जाती हैं, क्या बात है आपकी, सलाम है आपको। तो बहरहाल बेटों ने बाप के साथ बात करने के दौरान अच्छा मामला नहीं किया और कुछ ऐसी ही बातें करने लगे। कहने लगे, आप इस शहर के लोगों से दरियाफ़ फरमा लें जहाँ हम थे, और इस काफ़िले से भी पूछ लें जिसके साथ हम आए हैं, और यकीनन हम बिल्कुल सच्चे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो नहीं, बल्कि तुमने अपनी तरफ से बात बना ली, बस अब सब्र ही बेहतर है। करीब है कि अल्लाह ताला इन सब को मेरे पास ही पहुँचा दे, वही इल्म और हिकमत वाला है। फिर इनसे मुंह फेर लिया और कहा, हाय यूसुफ, इनकी आंखें बवजह रंजो गम के सफ़ेद हो चुकी थीं और वो गम को दबाए हुए थे। बेटों ने कहा, वल्लाह आप हमेशा यूसुफ की याद में ही रहेंगे, यहाँ तक कि घुल जाएं या ख़त्म हो जाएं। बाअदब बानसीब, बेअदब जो भी है। उन्होंने कहा, मैं तो अपनी परेशानी और रंज की फरियाद अल्लाह ही से कर रहा हूँ, मुझे अल्लाह की तरफ से वो बातें मालूम है जो तुम नहीं जानते। इन नमाशकू बसी व हुस्नी इलल्लाह, सारे दुखों का इलाज ये बात है, सिर्फ अल्लाह से शिकवा शिकायत करें। बंदे आपके मेरे दुख नहीं सुन सकते, और सुन भी लेंगे तो मदद नहीं कर सकते। मेरे प्यारे बच्चों, तुम जाओ और यूसुफ की और इसके भाई की पूरी तलाश करो, और अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना। यकीनन अल्लाह ताला की रहमत से ना उम्मीद वही होते हैं जो काफिर हैं। फिर जब ये लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो कहने लगे, ए अजीज़, हमको और हमारे ख़ानदान को दुख पहुँचा है, हम हकीर पूंजी लाए हैं, बस आप हमें हमारे पूरे गल्ले का नाप दीजिए और हम पर खैरात कीजिए, अल्लाह खैरात करने वालों को बदला देता है। कल तक क्या कह रहे थे, नाहनु उस्बा, हम बड़ी जमात हैं, तकबर तो बड़ा ही थी, और आज कह रहे हैं सदका ही दे दो हमें, किसी बैगर को जेब में लाइए। यूसुफ ने कहा, जानते भी हो कि तुमने यूसुफ और इसके भाई के साथ अपनी नादानी की हालत में क्या किया। नाउ यूसुफ इज एक्सपोजिंग हिमसेल्फ। तीसरी मुलाकात में आप जितनी मर्जी कोशिश कर लेना, बीज ने अपने वक्त में ही फूटना है, और वो तने ने अपने वक्त में ही फूल में और फिर आगे से किसी डंठल की सूरत में ढलना है। यूसुफ अब अपना आप एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि अब सब्र नहीं हुआ, और अब मौका भी था कि बता दूं क्योंकि तुम इतने तकलीफ में हो इस वक्त। उन्होंने कहा, वाकई तू ही यूसुफ अलैहि सलाम है? जवाब दिया, हाँ अना यूसुफ, दो तीन लफ्ज़, अना यूसुफ वहा जाकी, और ये मेरा भाई, आज हम जैसा, मैं वजीर खारजा फलां, ममलकते मिस्रिया और फलानी फलानी का अफसर हूँ। जो अल्लाह से जुड़ते हैं ना, वो अपने नाम बहुत छोटे रखते हैं। तो यहाँ अमल की नोट कर के लो प्रोफाइल पे काम कीजिए, अपने गुण ना गाइए, अपनी तारीफें ना करें, काम करके दिखाएं कि आप क्या करते हैं। बाज़ लोग अपनी कामयाबी और शोहरतों के झंडे गाड़ देते हैं, बड़े बड़े स्लोगन, बड़े बड़े ऐड, बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट, बड़ी बड़ी मोनेटाइजिंग और फला फला। आप बंदे तो इकट्ठे कर लेंगे, बरकत उसमें होगी जो अल्लाह की तरफ से होगी। तो क्या पता चला कि यूसुफ ने खास प्रोटोकॉल नहीं, आम बात किया ना, यूसुफ, आई एम यूसुफ, ऐसे लग रहा है कि जैसे एक छोटा सा बच्चा कह रहा है, माई नेम इज़ यूसुफ, और ये मेरा भाई है, अल्लाह ने हम पर फजलो करम किया। बात यह है कि जो भी परहेजगारी और सब्र करे तो अल्लाह ताला किसी नेकुकार का अजर ज़ाया नहीं करता। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला ने तुझे हम पर बरतरी दी है, और ये भी बिल्कुल सच है कि हम खताकार थे। जवाब दिया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें बख्शे, वो सब मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है। मेरा ये कुर्ता तुम ले जाओ, इसे मेरे वालिद के मुंह पर डाल दो, वो देखने लगेंगे और आ जाएं, और अपने तमाम खानदान को मेरे पास ले आओ। क्या बात है, गम बांटने वाले यूसुफ के दिल में कितनी मोहब्बत थी। तो क्या पता चला इस रुकू से, सहाबा का हजरत याकूब की तरह दूसरों को अपने गम सुनाने का नहीं, अल्लाह को अपने गम सुनाने का तरीका था। इन्नमा अश्कु बस्ती व हुज़्नी इलल्लाह। आप भी अमल की बात नोट कर रहे हैं इस पे, मैंने अपने गम किसी को नहीं सुनाने, क्यों भाई? नंबर एक, पहली दफ़ा तो बड़े शौक से सुनेंगे, और क्या हुआ, और क्या करते हैं घर वाले, सस्पेंस भी बहुत होता है, स्टोरी सुननी है, नहीं, मैं अपनी दोस्त का दुख सुन रही हूँ। दूसरी दफ़ा इट्स ओके, कुछ हुआ उसके बाद, हाँ मुझे भी बड़ी फिक्र थी। तीसरी से चौथी बार जब आप अपना गम किसी को सुनाएंगे ना, तो वो पहलू तही करेगा, और चौथी दफ़ा तो आपका नंबर ही देख के नहीं उठाएगा कि अब इसने तो 1 घंटा मुझसे बात करनी है। सिर्फ एक हस्ती है, रात दिन सुबह शाम आपकी बात सुनती है, और वह समी अल्लाह की ज़ात है। दूसरी बात ये कि दूसरे सुन के करेंगे क्या, अल्लाह तो उसका एक्शन ले लेगा। तो इन्नमा अश्कु बसी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं शिकवा करता हूँ अपने बस का। बस कहते हैं उस गम को जो छुपाना चाहे बंदा, लेकिन छुपे ना, कभी हंसते हंसते आंसू नहीं निकल जाते, मुस्कुराते मुस्कुराते आप रो नहीं पड़ते, अंदर गम है, बाहर से आप मुतमईन दिख रहे हैं, और हुज़न तो हुज़न ही है। आपने मैंने क्या सीखना है, मशवरा करना है, सच्चा होना है, सब्र करना है, सदका करना है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना, और अपनी परेशानी और गम का शिकवा सिर्फ अल्लाह से करना है। आगे रुकू नंबर 5, 94 से 104 में अब एक और सफ़र शुरू होता है। टॉपिक अल्लाह मोमिनों का वली है। वलम्मा फसलतिल ईर, और जब ये काफ़िला जुदा हुआ तो इनके वालिद ने कहा, मुझे तो यूसुफ़ की खुशबू आ रही है, अगर तुम मुझे सठाया हुआ करार ना दो। वो कहने लगे, वल्लाही आप अपने इसी पुराने खप में मुब्तला हैं। जब खुशखबरी देने वाले ने पहुँच कर इनके मुँह पर वो कुर्ता डाला, उसी वक्त फिर बीना हो गए। कहा, क्या मैं तुमसे ना कहा करता था कि मैं अल्लाह तआला की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। उन्होंने कहा, अब्बा जी आप हमारे लिए गुनाहों की बख्शिश तलब कीजिए, बेशक हम कसूरवार हैं। कहा, अच्छा मैं जल्द ही तुम्हारे लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगूंगा, वो बहुत बख्शने वाला और नहायत मेहरबानी करने वाला है। जब ये सारा घराना यूसुफ के पास पहुंच गया तो यूसुफ ने अपने माँ बाप को अपने पास जगह दी और कहा कि अल्लाह को मंजूर है तो आप सब अमन अमान के साथ मिस्र में आओ। और अपने तख्त पर अपने माँ बाप को ऊंचा बिठाया और सब उसके सामने सजदे में गिर गए। तब कहा, अब्बा जी, ये मेरे पहले के ख्वाब की ताबीर है। मेरे रब ने इसे सच्चा कर दिखाया। उसने मेरे साथ बड़ा एहसान किया जब मुझे जेल खाने से निकाला और आप लोगों को सहरा से ले आया। इस इख्तलाफ के बाद जो शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में डाल दिया था, मेरा रब जो चाहे इसके लिए बेहतरीन तदबीर करने वाला है। वो बहुत इल्म और हिकमत वाला है। अब रब के सामने हाथ उठाते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे मुल्क अता फरमाया और मुझको ख्वाबों की ताबीर सिखाई। ऐ आसमान और ज़मीन के पैदा करने वाले, तू दुनिया और आखरत में मेरा वली यानी दोस्त और कारसाज है। तू मुझे इस्लाम की हालत में फौत कर और नेकों में मिला दे। ये गैब की खबरों में से है जिसकी हम आपकी तरह वही कर रहे हैं। आप इनके पास उस वक्त मौजूद ना थे जबकि उन्होंने अपनी बात ठान ली थी और वो फरेब करने लगे थे। गो आप लाख चाहें लेकिन अक्सर लोग ईमानदार ना हैं ना होंगे। आप इनसे इस पर कोई उजरत तलब नहीं कर रहे। ये तो तमाम दुनिया के लिए निरी नसीहत ही नसीहत है। तो इस हिस्से में हज़रत यूसुफ की दुआ है आयत 101 में, फातिर समावाती वल अर्दी अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा तवफ्फनी मुस्लिमन वअल्हिकनी बिस्सालिहीन। आप ये दुआ मांगा करें। अब देखिए, यूसुफ के पास सब कुछ था। अब तो घर वाले भी मिल गए, खानदान भी पास आ गया, परदेश में रहने लगा सब कुछ होना, लेकिन वो अपनों को तरसता है। अब यूसुफ को बस एक ही साथ चाहिए, रब का साथ, अच्छा इंजाम, इस्लाम की हालत में मरना। आप देखिए कि इस पूरी स्टोरी में अभी तक जो हमने पढ़ी है, पहले अपने लिए अल्लाह की रज़ा के नुक्ते ले, मैं एंड पे सूरत के कुछ खुलासा करना चाहूँगी। अब इनायत में क्या है, वालदैन को खपती नहीं समझना, गुनाहों की माफ़ी मांगना है, अल्लाह ताला से दुआएं करनी है, बुरी चालें नहीं चलनी, अल्लाह ताला को अपना हकीकी सरपरस्त समझना है और नेक लोगों के साथ के लिए दुआएं करनी है कि अल्लाह हमें नेकों का साथ अता कर दे। और आगे अब आखिरी आयत है, 105 से 111 रुकू नंबर 6 है। सैर व सियाहत का मकसद इबरत लेना है। वकई ये मिन आयतिम फिस समावात, आसमान और ज़मीन में बहुत सी निशानियाँ हैं जिनसे ये मुँह मोड़े गुजर जाते हैं। इनमें से अक्सर लोग बावजूद अल्लाह पर ईमान रखने के भी मुशरिक ही हैं। इसको ज़रा सा हाईलाइट करें, बाद में इस पे बात होगी। क्या वो इस बात से बेखौफ हो गए कि इनके पास अल्लाह के अजाबों में से कोई अजाब आ जाए, या इन पर अचानक क़यामत टूट पड़े और वो बेखबरी में हों? आप कह दीजिए, मेरी राह यही है और मैं और पैरोकार अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं पूरे एतमाद और यकीन के साथ, और अल्लाह पाक है और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। आपसे पहले हमने बस्ती वालों में जितने रसूल भेजे हैं सब मर्द ही थे जिनकी तरफ हम वही नाजिल फरमाया करते थे। क्या ज़मीन में चल फिर कर उन्होंने नहीं देखा कि इनसे पहले लोगों का क्या अंजाम हो चुका? यकीनन आखरत का घर परहेजगारों के लिए बहुत बेहतर है। क्या फिर भी तुम नहीं समझते? यहाँ तक कि जब रसूल नाउमीद होने लगे और वो कौम के लोग ख्याल करने लगे कि इन्हें झूठ कहा गया, फौरन ही हमारी मदद इनके पास आ पहुंची, जिसे हमने चाहा इसे निजात दी गई। बात यह कि हमारा अजाब गुनाहगारों से वापस नहीं किया। इनके बयान में अक्ल वालों के लिए यकीनन नसीहत और इबरत है। ये कुरान झूठ बनाई हुई बात नहीं, बल्कि ये तस्दीक है इन किताबों की जो इससे पहले की हैं। खोल खोल कर बयान करने वाला हर चीज़ को, और हिदायत और रहमत है ईमानदार लोगों के लिए। सूरह यूसुफ की शुरू की आयतें याद आ रही हैं, पहली आयत कुरान से मुतल्लिक थी, और आखिरी आयत भी देखिए कुरान से मुतल्लिक है। क्या पता चला कि इस आखिरी हिस्से से आपने मैंने क्या सीखा? अल्लाह के अजाब से बेखौफ नहीं होना, अल्लाह ताला की तरफ दावत देनी है, वाकयात से इबरत हासिल करनी है, ज़मीन में चल फिर कर लोगों के अंजाम को देखना है, और झूठे गुमान नहीं रखने, और अक़ल से काम लेना है। तब देखिए कि सूरत यूसुफ तो पूरी हो गई। ना यूसुफ की शादी हुई जुलेखा से, ना जुलेखा का नाम कहीं पड़ा, ना अपने हज़रत यूसुफ का एक बार भी उनके ज़ाहरी हुसन के ज़रिए से तारुफ सुना। कहीं भी आपने हुसन यूसुफ की बातें सुनी? आंखें, पलकें, लंबी चौड़ी? नहीं, ये हमारी लोक दास्तानें हैं। हमने जहाँ देखा यूसुफ का अंदर का हुसन देखा। तो सूरत यूसुफ से आपको मुझे क्या सबक मिलते हैं कि हज़रत यूसुफ का किरदार कितना खूबसूरत था, अपनों की तरफ से आई हुई परेशानियों पे कितना सब्र किया। हमने क्या करना है? हर मुश्किल और परेशानी में अल्लाह से रजू करना है, याकूब अलैहिस्सलाम की तरह, इन्ना मशको बसी व हुज़्नी इलल्लाह। फिर अपनों की तरफ से आई हुई परेशानियों पे कुड़ना नहीं है, जैसे यूसुफ और याकूब नहीं कुड़े। अपनों से मिले दुखों पर इनके हक में दुआ करनी है। कौन कौन इतना जिगरा रखता है? बहुत मुश्किल है। यहाँ बैठ के ये सूरत पढ़नी बहुत आसान है, अपने घर और ख़ानदान में बैठ के बड़ी मुश्किल है। इस तरह अल्लाह ताला की इन निशानियों पे गौर करके इनसे इबरत और नसीहत लेनी है, और साथ ही अपना मुहासबा भी करना है कि क्या मैं अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद होती हूँ, क्या मैं अपने गम पर सब्र कर लेती हूँ, क्या मैं मुश्किलात पर वावीला तो नहीं मचा देती, क्या मैं सिर्फ़ अल्लाह पे तवक्कुल करती हूँ। और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों के साथ स्पेशली जो यूसुफ़ का सब्र का मामला था, ये नबी सल्लम का और यूसुफ़ का बहुत प्यारा ताल्लुक़ था। जैसे हज़रत यूसुफ़ ने खूबसूरत तरीके से तबलीग की थी जेल के कैदियों को, अल्लाह के नबी भी ऐसी तबलीग करते थे, हिकमत के साथ बात करते थे, और जिस तरह उन्होंने क्या कह दिया, ला तसरीबा, आज तुम्हारी कोई पकड़ नहीं। अल्लाह के नबी ने भी फ़तेह मक्का के मौके पे यही जुमले बोले थे, जब आपने लोगों से कहा था कि तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो, तो लोगों ने कहा था कि हमें आपसे बहुत अच्छी उम्मीद है। क्या लोगों को आपसे और मुझसे भी अच्छी उम्मीदें हैं? क्या हम वाकई तकवा और सब्र का ताल्लुक़ रखते हैं? और अगर ये नहीं है तो फिर कामयाबी नहीं होगी। आप देखिए कि हज़रत यूसुफ़ की ज़िंदगी में इतने मराहिल क्यों आए? जवाब यह है कि बीज से फल बनने के दौरान दरख्त में कितने मराहिल आते हैं, ये फितरत का असर है। सहाबा किराम की ग्रोथ इसलिए थी कि वो दरख्त की तरह बड़े थे, क्योंकि उन्होंने हर गर्मी सर्दी सही थी। आप तो गर्मी में दरख्त के नीचे आ जाते हैं, दरख्त किसके नीचे आए? सवाल लिखिए। हम साया ढूंढते हैं ना, दरख्त को साया कौन देता है? इसमें आज आप बहुत बड़ा सबक सीखने लगे हैं। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जिनको किसी की अम्ब्रेला के अंडर आने का मौका मिल जाए। जो हमारे बड़े होते हैं ना, वो एक छतरी, अम्ब्रेला, शेल्टर की तरह हमें अपने अंदर छुपा लेते हैं ज़माने की गर्मियों सर्दियों में। दुख आएगा, सुख आएगा, किसको बताएं, इनको बताते हैं, फ़ौरन रिएक्शन हो जाएगा। आप अकेले होंगे ना, टुंड मुंड हो जाएंगे, सड़कें जल जाएंगे, आपके पास असबाब नहीं होंगे। सहाबा कराम ने नबी सल्लम की छाँव में दुख सुख सहे थे। एक बाप अपने बच्चों को कहा करते थे कि मुझे सहारा समझने वालों, अगर मैं लड़खड़ाया तो किधर जाओगे? क्या मतलब अपने पाँव पे खड़े हो? हर दरख्त को सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ता है। जड़ों से कटे दरख्त को एलवी से भी जोड़ देंगे तो ग्रो नहीं करेगा। आप मैं अपने अपने कामों के खुद मुकल्लफ हैं। कामयाबी है कि नाकामी, तरक्की है कि नहीं, लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कानून पास हो रहे हैं कि नहीं, रूल एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं नहीं, लुक एट योर सेल्फ। जो काम स्टाफ करता है बाद में वही स्टूडेंट करते हैं। तो लिहाजा दरख्त के और इस सारे तकाबुल से क्या पता चला, साथ ही यूसुफ को मिला है। अगर अल्लाह ताला चाहते तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ ये मरहले ना आते। पहले कुएं में डाला, फिर निकाला, फिर मिस्र में पहुँचाया। लिखिए, ये सब अल्लाह की कंस्टडी में हो रहा था, अल्लाह की निगरानी में हुआ था, जैसे माली की निगरानी में दरख्त ग्रो करता है। अल्लाह ताला चाहता तो आपको कुएं के मराहिल से गुजारे बगैर मिस्र के इकतदार तक पहुँचा देता, लेकिन अगर ये गैर मामूली हालात पेश ना आते तो असबाब की इस दुनिया में फिर ये बात कैसे मिसाल बनती कि अल्लाह उन लोगों की मदद करता है जो सब्र और तकवा की रविश अख्तियार करते हैं। तो याद रखिए, दुनिया में दो तरह ही की बातें हैं, कुछ वाक़ बड़े मशहूर हो जाते हैं, कुछ मशहूर नहीं होते। यूसुफ का किस्सा शोहरत पकड़ गया, बहुत सारे नेक लोग दुनिया से गुजरे हैं, गुमनामियों में चले गए। अल्लाह जिस चीज़ को शोहरत दे दे, जिसको ना दे, किसी को ज़्यादा लोग सुनने लग जाए, किसी को ना सुनने लगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वल्लाह ही इससे, क्योंकि रजलुम वाहिद, एक भी बहुत होता है। तो ऐसे ओछे हथकंडे इख्तियार करके जिससे अपने लोगों को बढ़ा लिया, दूसरों को कम किया, ये दरख्तों की शान नहीं होती। कभी किसी दरख्त पे फल नहीं लगता, तो नहीं लगा, पता ये बात कि नहीं? एक साल फल ज़्यादा लगता है, एक साल कम लगता है, तो क्या हुआ? व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बहार रख। कभी किसी दरख्त को आपने देखा दूसरे के दरख्त के वे आम उतार के अपने पे चिपका रहा है? बस साहबा, इन सारी जकड़बंदियों से आज़ाद थे जो आज दीन के नाम पे भी हमें दिखती हैं। कई लोग ग्रुप्स में सिर्फ इसलिए रहते हैं कि वहाँ से कॉन्टैक्ट्स ले सके, कुछ इसलिए होते हैं कि चंदा मांग सके, कुछ इसलिए होते हैं कि अपने ईद के कपड़े बेच सके। आपका नसीब है, आप जहाँ से जो लेने आएंगे आपको वही मिलेगा। साहबा एक ही थे, नबी एक ही था, लेकिन नतायज, अब्दुल्ला बिन उबई भी तो साहबी था, कहने को दिल करता। नबी की महफिलों में उठता था, जुमे पढ़ता था। आप और मैं अभी तक नहीं इतना लंबा सफ़र करके दिन के लिए गए होंगे, तबुक तक गया था, फिर वापस आ गया, या उसके साथ ही गया, या जो भी था। असल कहानी क्या है? वट इज़ इन योर इनसाइट? जो अंदर है ना, आप बीज अनार का डालें और आप उम्मीद करें इधर से अमरूद हो गए, नहीं उगेंगे, तो जो आपकी असल है ना, वो नहीं छुपेगी, थोड़े दिन पर पता लग जाएगा। आप जितने मर्जी उछलें कूदें, मुझे बहुत आता है, मैं बहुत जानती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा काम करना आता है। आप जब मेरे साथ वास्ता डालेंगे, आपको पता चल जाएगा इनको कुछ नहीं आता, ये सिर्फ बातें ही करती हैं, या लोगों को गलती लगी हुई है। तो क्या पता चला? इनफिरादी नुसरत बामुकाबला इज्तमाई नुसरत। ये बहुत बड़ी बात बताने लगी हैं आपको, लिखिए, इसमें एक बहुत बड़ी बात है। आप देखिए कि हज़रत यूसुफ़ के भाइयों ने जब यूसुफ़ की बड़ाई को मान लिया, कहते थे लकद आसरक अल्लाह अलैना, ए यूसुफ़, अल्लाह ने आज तुझे हम पर चुन लिया। मुतासर असर, वही लफ्ज़ है। खुले तौर पे अपनी गलती का इकरार भी कर लिया, सॉरी अब्बा, वी वर रॉन्ग। दूसरी तरफ देखे तो यूसुफ ने भी आला जरफी का सबूत दिया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, और अल्लाह को मानने वाला शख्स ऐसे ही होता है। फिर उससे भी बढ़ के मलामत नहीं की, विन विन, तुम भी जीतो हम भी जीते, आप भी खुश हम भी खुश। आज हम पता क्या करते हैं? खुद जीतेंगे, अगले को हराएंगे। अगले ने मेरे से ये किया, वो किया, उसकी बुराइयाँ करेंगे और कहेंगे जवाब में वो मुझसे मोहब्बत करे, नहीं होगा। यूसुफ ने शर्मिंदगी से बचाकर उनको भी जीत लिया और ख़ुद भी जीत गए। असल ये बात है। फिर माजी के तल्ख वाक्यात को अचानक भुला दिया और भाइयों से भाइयों वाले ताल्लुक बना दिए। तो ये है इनफिरादी नुसरत को इज्तमाई नुसरत में बदलना। आसान लफ्ज़ भी बोल दूंगी, पर्सनल सक्सेस को कम्युनिटी, कॉमन सक्सेस में बदलना। आप देखिए कि यूसुफ तो आ चुके थे ना मिस्र में, उनको क्या लगे? बनी इसराइल को 60 से 70, कहते 67 लोग हजरत याकूब के ख़ानदान के समेत यूसुफ की वजह से मिस्र में आके आबाद हो गए। आपकी ज़ुबान में बोलूँ, अपना वीज़ा तो लगा नॉर्वे का, बाकी पीछे वालों के भी लगवा लगवा के उनको बुला लिया। पेरिस का लगा, पेरिस वालों को बुला लिया, जर्मनी का लगा, उधर लगा लिया, और यहाँ वाले रास्ता देख रहे हैं कि हमारा भी कोई बाहर जाए, ताकि चलो 10 साल बाद 12 साल बाद हम भी चले जाएं। आज भी मैं ऐसी फैमिलीज़ को जानती हूँ, 20 22 25 साल से ज़ायद हो गया, वो अमेरिका जाने के मुंतज़िर हैं, क्योंकि एक का लग गया, अब दूसरे का, अब तीसरे का, अभी बारी नहीं आई, अभी कहीं ग्रीन कार्ड भी नहीं मिला होगा शायद। फितरत का एक असूल लिख लें, जो चीज़ ग्रो करे इज्तमाई तौर पे, वहाँ के लोगों को इनफरादी तौर पे भी ग्रो करना चाहिए। इदारा अगर सक्सेसफुल है तो आपको भी सक्सेसफुल होना पड़ेगा। अगर कामयाबी इस्लाम की है तो सहाबा की भी हुई। इस सहाबा के साथ पहले गुर्बत थी, क्योंकि इस्लाम गरीब था, जब इस्लाम में माल आने लग गया, सहाबा को भी मिलने लग गया। आप हैंड टू माउथ हैं तो सब्र कीजिए, कुर्बानियाँ दीजिए, कल जब प्रॉफिट में आ जाएगा तो आपको भी इसमें से वजीफा मिलने लग जाएगा। सहाबा किराम रोया करते थे, कहते थे पहले एक वक्त हमारे जिस्म पे कपड़े जोड़ने के लिए बटन नहीं थे, कांटे थे, और आज हमारे पास इतना माल इस्लाम के नाम पे आ रहा है, लेकिन इसमें सब्र, खपना तपना, जिधर आप देते हैं ना आपको उधर से ही मिलता है, ये लिख के रख लें। जहाँ चवन्नी गुमी वहीं से ढूंढेंगे तो मिलेगी, 4 गज़ दूर से नहीं मिलेगी। इस्लाम के रास्ते में आपका जो लग रहा है, कल इसी से मिलना है। सहाबा भी इसकी मिसाल थे, आज आप भी इसकी गवाही देंगे। अल्लाह कभी आपका रखता नहीं, आप एक बीज देते हैं, अल्लाह 700 बीज से ज़्यादा देता है। कभी ऑरेंज जूस बनाया होगा, फ्रेश जूस, एक ग्लास में से मैंने गिनने की बड़ी कोशिश की, रोज़ ही जो ज़्यादा रहता था पल्प के साथ, तो मैं देख रही थी कम अज़ कम 200 से 250 बीज एक ग्लास में से निकलते हैं, और उस वक्त मैं जूस नहीं पी रही होती, मैं उन बीजों को देख के कहती हूँ अल्लाह तेरी मखलूक यानी ज़मीन इतनी अमानतदार है कि उसको एक बीज दिया तो वो पीछे 300 बीज दे रही है, तो तू तो खालिक है, तू कितने देगा जो तेरे रास्ते में बिन देखे डाल रहे हैं। मसलुल्लज़ीन युन्फिकून फ़ी सबीलिल्लाही, वाली बात। तो बहरहाल आप खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, साथ लेकर चलें, बेहतरीन तरीके से ये काम होते हैं तो ग्रोथ होती है। अगर आपके साथ काम करने वाले परेशान होंगे तो आप ज़्यादा देर नहीं आगे चल सकेंगे। अल्लाह ने कायनात में ये सब कुछ रख कर आपको मुझे क्या बताया है? इन्ना रब्बी लतीफ़ुल लिमा यशा। गैर मखसूस तरीके से मख्फी राहें खोल देता है अल्लाह काम करने की। आप आज रात इधर कोई नीयत करेंगे ना, घर जाने तक उसके असबाब जमा हुए होंगे, ये मैं आपको लिख के देती हूँ। चुपके से रात सोते में बिस्तर पे आपको बात करते हैं, अगले दिन वो चीज़ होती है, आप कहते हैं अल्लाह मैंने किसी को कह तो नहीं दिया, ख्वाब में तो नहीं किसी को आ गया। ऐसे होगा आपके साथ, क्योंकि अल्लाह अपने प्लान्स को पूरा कराने के लिए स्विफ्ट भी है, खामोशी के साथ वो काम करता है कि आम बंदे की तो सोच वहाँ जाती ही नहीं है। आप मैं तो बड़े कमज़ोर हैं। तो बहरहाल अल्लाह की अजमत का एहसास दिल में भर जाए तो कुरान बोलती हुई किताब है, और अगर अजमत का एहसास नहीं तो गूंगी किताब है ये। तरावियों में लोगों को देखा करें, एक पाँव पे खड़े होते कभी दूसरे पे, बेचारे पारा ही नहीं खत्म होने पे आता, इसलिए कि हमें ये कुरान समझ नहीं आता। तो ये सूरतें बेटियों को शादियों पे पढ़ के ना फूकें कि वो खूबसूरत हो, और प्रेग्नेंट औरतें पढ़ें बच्चे खूबसूरत हो जाए, वो भी क्या खूबसूरत हो, निकम्मे बच्चे खूबसूरत भी हुए तो अच्छे लगेंगे। और हुसन की परी भी घर में आ गई और उसको बात करने की तमीज़ नहीं है तो वो कितने को दिन दिलों पर राज करेगी। बेटियों को सिखानी है तो सूरत यूसुफ की तफसीर सिखाइए, शादी करी ना उस बच्ची बच्चे की जो एक दफ़ा कुरान का ये पैकेज ना पूरा कर ले। तो बहरहाल जो हम कर सकते हैं इस वक्त में वो कर सके, अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें हिकमत दे दे और दरख्त की तरह बढ़ने वाले बना दें, जो बढ़ने में शायद कुछ टाइम लगाएं लेकिन काटने में भी उतना ही टाइम लगे। बेल को तो एक इशारे से कोई काट जाएगा, दरख्त काटने वाला भी सोचेगा $1,000 लगता है अमेरिका में एक दरख्त कटवाने का। ये तजुर्बा हुआ हमें पिछले सालों में, अपने इदारे के बाहर से कुछ दरख्त कटवाने थे तो पर ट्री $1,000, कितने बनते हैं आज का रेट जाके चेक कर लें, कि आपका काम कोई काट ना सके। और इखलास के साथ पानी देते जाएं, अल्लाह ताला बाद में आपकी मेहनतों की आबियारी करेगा। मेहनतों को अल्लाह कभी ज़ाया नहीं करता, वो रख लेता है और उसके बाद वो चीज़ें मौजूद रहती हैं।